તારીખ 26/11/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 155 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 152
શ્રી સમયસર પરમાજી પુણ્ય પાપ અધિકાર ગાથા 155 કી ટીકા
155 ગાથા ની ટીકા
ફિર સે લેતે હૈ થોડા શરૂ સે मोक्ष का कारण वास्तविक रूप से कौन है उसको बतलाते हैं। इस जीव को वास्तविक मोक्ष का कारण क्या है जिससे वो दुख से छूटे, अपने मलिन परिणाम रूप दोषों से छूटे और इनके फल स्वरूप जन्म मरण से भी छूटे। तो पहला सूत्र वो दिया है कि मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है एकमात्र, वास्तव में भी यही है और एकमात्र कारण वही मोक्ष का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन प्रकार के जो परिणाम हैं एक साथ होते हैं मोक्ष मार्ग में, वही मात्र मोक्ष का कारण है। अब तीनों का स्वरूप दर्शाते हैं क्योंकि तीनों की एकता है उसी को मोक्ष मार्ग कहा है। तीनों की एकता उस पर थोड़ा भजन है इधर कि सम्यक दर्शन वो है के जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना है और जीवादि पदार्थों के ज्ञान भाव रूप ज्ञान का होना परिणमना और रागादि के त्याग स्वभाव रूप यानी रागादि के अभाव स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना सो चारित्र है। तीनों में एक बात क्या आई, ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमन करना, ये तीनों में एक ही बात है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए क्या होता है कि ज्ञान ही मोक्ष मार्ग, ज्ञान का परिणमना होना ही मोक्ष मार्ग है क्योंकि सम्यक दर्शन में भी ज्ञान का परिणमना है, सम्यक ज्ञान में भी ज्ञान का परिणमना है और सम्यक चारित्र में भी ज्ञान का ही परिणमन करना है। तीनों की तीनों में एक ही बात है, तीनों में तीन बात नहीं लिया। आचार्य महाराज ने ऐसा क्यों लिया, ऐसे तो परिणमन तो आत्मा करते हैं अनंत गुणों रूप, तीन ये तो तीन मुख्य गुण है लेकिन अनंत गुण की शुद्धता रूप परिणमन करने वाला तो आत्मा ही है। यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करके ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, इसका क्या कारण है इस पर थोड़ा विचार करें।
तेरे गुण स्वतंत्र परिणाम है
जी,
तेरे गुण स्वतंत्र परिणाम है।
नहीं, यहाँ थोड़ा मर्म ऐसा है कि ज्ञान में अहमपना होता है तब ये कार्य होता है। आत्मा माने क्या, आत्मा का परिणमन लो, ज्ञान का परिणमन छोड़ करके विचार करें कि तीनों का परिणमन वो आत्मा का परिणमन है। सम्यक श्रद्धान रूप भी आत्मा का परिणमन है, सम्यक ज्ञान रूप भी आत्मा परिणमता है और सम्यक चारित्र रूप भी
आत्मा
परिणमता है। आत्मा माने क्या, कि अहम इति क्या, प्रवचन सार में जयसेन आचार्य महाराज ने टीका लिखी है इसमें प्रश्न उठाया कि आत्मा को इति चेत, आत्मा मैंने क्या समझना, क्या कहना चाहते हैं आप कि आत्मा मैंने
मैं
आत्मा मैंने दूसरा कोई नहीं लेकिन आत्मा मैंने मैं। तो ज्ञान में मैंपना होता है, स्वपना होता है, बस इसी का नाम आत्मा है। उसी को ही हम आत्मा कहते हैं। ये बात 733 वचनामृत परमागम सार में गुरुदेव ने लिया है कि स्वरूप से अनुभव में, स्वपने से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। स्वपने विदा तू ज्ञान ही आत्मा है, अनुभव क्यों वेदन खो, एक ही बात। और ऐसी ज्ञानानुभूति यही आत्मानुभूति है, और ऐसे आत्मानुभूति यह वास्तव में ज्ञानानुभूति है। और तेरा कलश में लिया, देखो तेरा नंबर में क्या लिया, चालीस पाना पे है मेरे पे, आत्मानुभूति इति शुद्ध नयात्मिका। आत्मानुभूति तो इस प्रकार से शुद्ध नयात्मिक है, और शुद्ध नहीं तो ज्ञान का पर्याय है, नहीं तो ज्ञान का पर्याय होता है। तो आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मिक है, तो यो ज्ञानानुभूति वो तो वास्तव में ज्ञानानुभूति है। फील मैंने वास्तव में इति बुद्धवा ऐसा जान करके आत्मानम आत्मनि निवेश्य, आत्मा में आत्मा का प्रवेश करके निष्कंप भाव से चारों ओर से एक आत्मा का ही अनुभव होता है। ज्ञान में अहम रूप से अनुभव, पुता रूप से अनुभव होता है ज्ञान का स्वयं के रूप में, यही आत्मानुभव है और यही ज्ञानानुभव है। इसमें कोई अंतर नहीं, शब्द भेद है, भाव भेद नहीं है। ये 15 गाथा का उपोद्घात किया है, इस कलश में 15 गाथा का उपोद्घात किया है राजमल जी ने। तो ऐसा लिखा कि ऐसे अनुभूति होने से फिर शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। 12 अंग में भी अनुभूति करने का ही विधान है। क्या लिखा, 12 अंग में भगवान गंधर्व देव ने ऐसी अनुभूति करने का ही विधान किया है। कथन को या विधान को, विधि के कथन को विधान कहते हैं। नहीं, अनुभूति करने के लिए है ये, और जिसने ऐसा अनुभव कर लिया उसको शास्त्र पढ़ने का बंधन रहता नहीं है, वो बंधन से वो छुटकारा हो गया, उसका उससे भी छुटकारा हो गया। हाँ, तो अनुभूति है, उसको क्या लिखा है 15 गाथा में कि पश्यदि जीन शासनम सर्वम, वो समस्त जीन शासन को देखता है, या ये अनुभूति है, यही वास्तव में समस्त जीन शासन है। एक अनुभूति में पूरा जीन शासन समाविष्ट होता है, ऐसा कहा। इतनी अनुभूति की महिमा आचार्य महाराज ने, कुंदकुंद आचार्य देव ने कहा, ये तो शब्द है, पश्यदि जीन शासनम सर्वम।
ऐसा व्यक्ति जीन शासन
वही जीन शासन है, मैंने ज्ञानी धर्मात्मा परमात्मा वही जीन शासन है। पढ़ने को नहीं बैठना, अनुभूति करने के लिए बैठना। पढ़ने का हेतु क्या है, अनुभूति करना वो पढ़ने का हेतु है, या पढ़ना वो पढ़ने का हेतु है? अनुभूति करना वो पढ़ने का हेतु होना चाहिए। समझाना मैं कहे,
अनुभूति आविष्कार, अनुभूति आविष्कार है कि नहीं?
कौन आविष्कार?
अनुभूति क्या बची, आविष्कार है कि नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई कि नहीं?
दिखाई क्यों नहीं दिखाई? अनुभूति में आत्मा प्रत्यक्ष है, अनुभूति में आत्मा प्रत्यक्ष है,
आविष्कार है।
अब प्रत्यक्ष अनुभव होना उसी का नाम आविष्कार है। आविष्कार कोई दूसरी चीज नहीं है। परिणमन में प्रत्यक्ष स्वानुभव होना उसी का नाम आविष्कार है, उसी का नाम आविर्भाव भी है। आविर्भाव कहो, आविष्कार कहो, साक्षात्कार कहो, सब एक ही बात है। तो ज्ञान का होना इसलिए लिया है, निकाला था ना प्रवचन रत्नाकर भाग 6 में ये प्रवचन चला है। गुरुदेव ने मुख्य पातया वितरागता की बात किया है। वह क्या यह स्वरूप की जिसको रुचि हुई है ऐसा संकीति की बात है। 118 पढ़ लिया है। जीवादि का श्रद्धान संकीत ऐसा कहा ऐसा जो वहां कहा है, वहां एकेंद्रियादि जीव है और घटपट आदि अजीव है, ऐसी श्रद्धा की बात नहीं। यहाँ सात तत्व के विकल्प की बात आचार्य महाराज कहना चाहते नहीं, परंतु जीव नायक भाव से वितराग भाव में आता है और राग स्वभावे या कर्म स्वभावे नहीं आता है, ऐसी स्वभाव विभाव की भिन्नता का श्रद्धान रूप जो वितरागी परिणति होना उसी का नाम संकीत है। क्या इसलिए ज्ञान का होना लिया है कि लोग नौ तत्व की श्रद्धा का विकल्प को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ तत्व की श्रद्धा वाला विकल्प होता है ना, तो उसी को लोग सम्यक दर्शन कहते हैं कि नौ तत्व की श्रद्धा है इसलिए हमको तो संकीत हो गया। तो कहते नहीं, ये बात यहाँ नहीं चलती है। यहाँ तो जीव नायक भाव में वितराग भाव में राग से भिन्न होकर के जो वितरागी परिणति में श्रद्धान रूप परिणमता है, वो श्रद्धा भी वितराग भाव रूप है, उसी को यहाँ सम्यक दर्शन यानी समकित कहने में आया है। श्रद्धान स्वभावे ज्ञान का होना ऐसा है ना टीका में, श्रद्धान स्वभावे ज्ञान का होना। वहां ज्ञान यानी आत्मा, ज्ञान यानी आत्मा ले लेना, ज्ञान माने एकिला ज्ञान गुण परिणमता है ऐसा मत लेना, ऐसा भेद नहीं पकड़ना। ज्ञान मैंने आत्मा, क्योंकि ज्ञान में अहम भाव हो गया। ज्ञान क्यों लिया, आत्मा नहीं लेकर के ज्ञान क्यों नहीं लिया? वो खोलते हैं गुरुदेव कि आत्मा नहीं लेकर के ज्ञान क्यों लिया, कि पहला वो राग नहीं लेना है, राग का अभाव सूचित करना है, एकिला ज्ञान लेना है, राग वाला परिणाम लेना नहीं है, वितरागी परिणाम लेना है। राग नहीं, राग का अभाव का सूचन करना है। व्रतादि का राग जो विभाव है, विकार है, उससे रहित ज्ञान का होना यानी कि आत्मा का परिणमन होना, इस प्रकार की बात है। वितराग स्वरूपी आत्मा स्वरूप का श्रद्धान रूप वितराग परिणतीय परिणमे उसी को सम्यक दर्शन कहने में आया है। उसी को सम्यक दर्शन कहने में आया है। इतना स्पष्टीकरण यहाँ लिया है। अब ज्ञान की बात लेते हैं कि देखो यहाँ शास्त्र का ज्ञान है ऐसा ज्ञान नहीं लेना है। जीवादि पदार्थों का ज्ञान स्वभावे ज्ञान का परिणाम ना वो ज्ञान है। इसका मतलब यही है कि शास्त्र का ज्ञान उसको यहाँ ज्ञान कहते हैं नहीं, वो तो परलक्ष्य ज्ञान है। यहाँ तो आत्मा का ज्ञान का अंतर में स्वसंवेदन रूप, कैसा ज्ञान लिया? आत्मा का ज्ञान का अंतर में स्वसंवेदन रूप, स्वयं का प्रत्यक्ष ज्ञान रूप से होना, उसी को यहाँ ज्ञान कहते हैं। किसको ज्ञान कहते हैं? इसको यहाँ ज्ञान कहते हैं। गुरुदेव के प्रवचन में ये चल रहा है। शास्त्र है, वो बात ठीक है, लेकिन जब साध्य करे तो साधन का उपचार आता है, वो भी उपचार आता है। क्या? अगर शास्त्र ज्ञान कराता तो सबको ज्ञान हो जाता, जितना शास्त्र पढ़े उन सबको हो जाता। लेकिन जो स्वयं का स्वसंवेदन ज्ञान को प्रकट करता है, शास्त्र में लिखा है उसी रीति से, उसी पद्धति से, तो उसके परिणाम में शास्त्र को निमित्त कहने में या साधन कहने में आता है। वही ज्ञान है। शास्त्र को साधन कहना, निमित कहना, यो व्यवहार है। ये क्या है? ये व्यवहार है। और व्यवहार है वो, व्यवहार से कहा इसका मतलब के वास्तव में वो कारण नहीं है, अपना परिणमन है उसमें जो पुरुषार्थ है यही कारण है। सुगानी जी तो इससे आगे बोल देते हैं कि जिस जिस साधन को व्यवहार से साधन बोलने में आया है, वास्तव में वो साधक नहीं बाधक है। ऐसा क्यों कहा? कि इधर उपयोग जाता है, और उपयोग तो अनुभव में इधर जाना चाहिए, अंतर में जाना चाहिए। अंतर में जाने के बजाय उपयोग उधर जाता है बाहर में, तो ये साधक है तो ये बाधक है। उल्टा परिणाम हुआ ने, वहां तक लिया है उन्होंने। तो
एक बात प्रदेश ने जुराई
कहते हैं कि किसी को शास्त्र का बहुत पठन हो, इसलिए उनको ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बात को जानता है, समझता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, समझता है, समझाता भी है, इसलिए उनको ज्ञान है, ऐसा मोक्ष मार्ग में मानने लायक नहीं है। हाँ, यह तो सदा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अपना स्वरूप का ज्ञान रूप होकर के परिणमन करता है, स्वसंवेदन रूप से, उसी को यहाँ ज्ञान कहने में आया है। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है और सभी अज्ञान। धर्मदास सुल्लक कहे हेमराज तो मान। नहीं, ब्रह्मो प्रकाश कर सकता है, किसी का प्रकाश नहीं कर सकता है, वो ज्ञान ही नहीं है, कैसे प्रकाश करेगा? जो स्वयं को नहीं अनुभवता है उसको ज्ञान क्या कहवे? वो ज्ञान नहीं, वो तो जड़ भी अपना अनुभव नहीं करता है और ये भी अपना अनुभव नहीं करता है, तो दोनों में क्या अंतर रहा कि दोनों जड़ है? जाओ। अपना अनुभव नहीं करने वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है लेकिन जड़ है, ऐसी बात है। और ये वितरागी पर्याय होती है, ऐसा ज्ञान है वो वितरागी पर्याय होती है। भाई त्रिलोकनाथ वितराग सर्वज्ञ देव इंद्र और गणधरों की सब धर्म सभा के बीच में जिस धर्म का निरूपण किया, ये धर्म तो ऐसा है। ये धर्म कोई मामूली चीज नहीं है और सब है वो कल्पित मार्ग है। इसके सिवा जो कोई धर्म कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहते हैं, ये कल्पना मात्र है, उसमें कोई दम नहीं है।
एकदम स्पष्ट बोल दिया है।
गुरुदेव तो प्रवचन में ऐसा बोले थे एक दफे कि वो गणधर देव को जब स्वानुभूति प्रथम आती है, सप्तम गुण स्थान में आते हैं, उसी वक्त उनको बार अंग की अंतर्मूर्त में रचना करने की लब्धि की प्राप्ति भी
हो जाती है,
होती है। तो अंतर्मूर्त में बार अंग की रचना जिस ज्ञान का उपयोग से हुई, वो उपयोग तो बार अंग में गया, आत्मा में से बाहर निकला, छठे गुण स्थान में आया तो बार अंग की रचना किया, सप्तम गुण स्थान में तो लब्धि उत्पन्न हुई, लेकिन लब्धि का प्रयोग तो छठे गुण स्थान में हुआ, तो वो ज्ञान बाहर निकला आत्मा में से, उसको ज्ञान कहना के नहीं कहना, के नहीं कहना, जाओ उसको भी ज्ञान
नहीं कहना।
जब गणधर देव की बार अंग की रचना वाला ज्ञान को ज्ञान नहीं कहना, तो फिर दूसरों को तो समझ लेना अपना कि कहीं भी अपना बाह्य क्षोभ में अभिमान होवे
नहीं,
नहीं, क्योंकि बार अंग के आगे तो इधर किसी को पास लाखवां अंश भी नहीं है, शास्त्रांश तो नहीं है, एक लक्ष्य का भी एक अंश नहीं है।
जो चीज नहीं है उसका मान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं वो,
हाँ
तो क्या हो?
ऐसा एक स्वरूप में अहम करना, उसका नाम अभिमान नहीं है। स्वरूप को छोड़ करके कहीं भी अहम भाव होना, उसी का नाम अभिमान,
अभिमान है।
स्वरूप में अहम होना, इसका नाम स्वाभिमान है।
पर
वो कर्तव्य है,
वो
कर्तव्य है।
बहुत सरस कह रहा है भगवान,
क्या कहा इसमें? और कहते हैं एक बात कि आत्मा के स्वभाव में तो अनंत गुण धर्म है, इसमें असाधारण गुण एक ज्ञान ही है।
असाधारण माने?
असाधारण मैंने सबसे विशिष्ट प्रकार का एक गुण कोई है तो ज्ञान गुण है,
प्रधान गुण।
हाँ, प्रधान गुण है। और इसी से ही आत्मा स्पेसिफाई किया जाता है। क्या? ज्ञान से ही आत्मा की स्पेशलिटी है, विशिष्टता है। हाँ, इसलिए ज्ञान से ही आत्मा को पहचानने में आता है, क्योंकि इसके अलावा उसको स्पेसिफाई कर सकते नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए वो असाधारण गुण एक ज्ञान ही है, ज्ञान गुण दूसरे किसी द्रव्य में नहीं है। पश्चात स्व और पर को भिन्न भिन्न जानने, ऐसा स्वभाव ही ज्ञान में ही है। स्व पर को भिन्नता ज्ञान से ही की जाती है, दूसरे से की जाती नहीं है। आत्मा के दूसरे किसी गुण में ऐसा स्वभाव नहीं है। गुरुदेव आश्चर्य व्यक्त करते हैं इस बात पर कि ओहो, आत्मा में जो अनंत गुण है, इसमें एक ज्ञान ही स्व पर का भेद पूर्वक जानने का स्वभाव वाला है। श्रद्धा सुख, श्रद्धा चारित्र, सुख में चारित्र ले लेना, श्रद्धा सुख चारित्र आदि गुण उस स्व पर का भेद कर सकता नहीं है। वो सुख आदि गुणों स्व को न तो अपने को जानता है, श्रद्धा सुख आदि जो गुण है, ये गुण न तो अपने को जानता है, न तो पर को भी जानता है। इसलिए ज्ञान को आत्मा का असाधारण स्वरूप कहा गया है। अब गुण नहीं बोले, क्या बोले अभी? कि ज्ञान को आत्मा का असाधारण स्वरूप कहा गया है। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। फिर बोले कि आत्मा का असाधारण स्वरूप
ज्ञान ही है।
इसलिए इस प्रकरण में ज्ञान को प्रधान करके ही व्याख्यान किया है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ज्ञान कहने से आत्मा और आत्मा की वीतराग परिणति ही प्रधान है। बीच में व्रतादि के राग जो आते हैं, उसकी मोक्ष मार्ग में कोई प्रधानता नहीं है, ज्ञान का परिणमन ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप, ये तीनों रूप स्वरूप ज्ञान ही परिणमता है, ऐसा कहकर के ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। ज्ञान है सो अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। पुण्य बंध का कारण है क्या?
पुण्य बंध का कारण
जो व्रतादि के विकल्प है तो पुण्य बंध का कारण है। नहीं
ज्यादा पुण्य भी खराब है, पुण्य मात्र
कल चला था ना चर्चा। देखो एक बीत रागे भाव लेंगे संत मुने, कल रात्रि को थोड़ी चर्चा चली, वो नीरति चार पंच महाव्रत का पालन करते हैं, नानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार, पांचों प्रकार के व्यवहार आचरण है वो पंचाचार का
पालन करते हैं,
नीरतिचार पालन करते हैं। और केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं होता है तो आयुष मनुष्य का पूरा करके वो मुनिराज सर्वार सिद्धि के देवलोक में भी जाते हैं। कितना आयुष है वहाँ?
33 सागर
का आयुष होता है, ये करण अनुयोग का विषय है बीच में, 33 सागर का आयुष। और ये पंचाचार का पालन करना चरण अनुयोग आया आया,
आया।
अध्यात्म की बात करते हैं, फिर वहां से निकल करके फिर वो मनुष्य होकर के निर्वाण पद को प्राप्त
होता है,
हो जाएंगे, सिद्धालय में पधारेंगे, उसको सर्वार सिद्धि के देव को फिर मनुष्य भव में निर्वाण होने के अलावा फिर आगे का कोई भव होता नहीं है, एक ही भव होता है। अब कोई सम्यक दृष्टि ऐसा है जैसे अपने श्रीमद जी कृपालु देव हुए, सुगानी जी हुए, वो गृहस्थ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में रहे, मुनिपद तक नहीं गए, इधर का आयुष पूरा करके 33 साल में पूरा किया, वो 52 साल में पूरा किया, वो कोई लंबा फर्क नहीं है 20 साल का, कोई सागरोपम में आयुष में 20 साल क्या है, कुछ नहीं है। स्वर्ग में 2 सागर की, 2.5 सागर की स्थिति में गए होंगे, 3 सागर की से ज्यादा नहीं, तो वैमानिक देव में जाते हैं आजकल दृष्टि 2 से 4 सागर की स्थिति वहां होती है आयु की, मिनिमम 2 सागर, मैक्सिमम 4 सागर, किसी का 2, किसी का 2.5, 3, 3, 4। ये गृहस्थी में तो ज्यादा पुण्य होता नहीं, व्यापार धंधा में फंसते हैं, कुटुंब परिवार स्त्री आदि में फंसते हैं, थोड़ा अशुभ भी हो जाता है। तो अघाती का बंध लंबा क्यों होता है? आयु तो अघाती कर्म है, ये करणानुयोग के सिद्धांत है कि जिसको तीव्र अशुभ हो तो नरक का लंबा आयु हो, जिसको तीव्र शुभ हो तो देवायु का लंबा आयु हो जाए। अनुभाग ज्यादा है तो स्थिति भी लंबी हो जाएगी, इधर अनुभाग कम है तो स्थिति भी कम पड़ी। वो 33 सागर पूरा करके मनुष्य होकर के निर्वाण को प्राप्त करेंगे, ये 2 सागर 2.5 सागर पूरा करके निर्वाण को प्राप्त को लाभ हुआ। तो मोक्ष मार्ग में आने की बात है, छूटने की बात है इधर। ऐसा तो कहा नहीं किसी ने, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि जो पुण्य करते करते भी मोक्ष नहीं मिलने वाला तो पाप करते करते मोक्ष मिलने वाला है, ये किसने कहा? ये कहा ही किसने? यहाँ तो पुण्य का निषेध करते हैं तो पाप का निषेध तो 2 दफे करते हैं, 1 दफे नहीं करते, वो तो 3 दफे हो जाएगा। ऐसा मान रखा है हमने, विराम स्थान है या अटकने का स्थान है,
ओक संज्ञा से माना
है, ये ओक संज्ञा से माना है, अज्ञान अज्ञान से ऐसा मान रखा है। इसको ये तो कहते हैं, क्या लिखा है 155 में, पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए यह गाथा की है कि परमार्थ बाहिर जीव, परमार्थ से जो बाह्य है वो जीव उसको कुछ न कुछ रूप में कारण मानता है, मोक्ष का हेतु जानता है। अज्ञान से वो पुण्य चाहता है जो संसार का हेतु है। क्या जो पुण्य से संसार मिलता है मोक्ष कभी मिलता नहीं है।
पाप से कैसे
मिले? फिर पाप से तो मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुण्य से ऊपर जाएगा, पाप से नीचे जाएगा, लेकिन मोक्ष में तो कोई नहीं जाएगा। न नीचे जाने वाला नरक में जाने वाला मोक्ष में जाता है, न स्वर्ग में जाने वाला मोक्ष में जाता है। लेकिन यहाँ तो पुण्य से किनारा आता नहीं है, पुण्य पुण्य वाली नाव है ही नहीं इधर। जब तो ये दृष्टांत दिया कि मुनिराज को अधिक पुण्य था और ये सम्यक दृष्टि को कम पुण्य है,
जल्दी जाना चाहिए था।
तो मुनिराज तो पहले जाना चाहिए था वहाँ मोक्ष में, और सम्यक दृष्टि पहले जाएंगे, क्या हिसाब लगाएंगे आप? कौन सा हिसाब किताब है? ये वितरागी मार्ग का हिसाब किताब ही दूसरा है। अपना लौकिक हिसाब किताब इसमें काम में आता नहीं है।
जो अपने अंदर जाएगा वो मोक्ष जाएगा,
जो अंदर में जाएगा वो मोक्ष में, अंतर में जाएगा वो मोक्ष में जाएगा। ऐसी बात है। कौन पहला जाएगा? कि जो पहला जाएगा वो मोक्ष में जाएगा। ऐसी बात है। यहाँ पुण्य को छुड़ा करके मोक्ष में ले जाते हैं, पाप में नहीं ले जाते हैं। क्या ये तो पुण्य को छोड़कर पाप को नहीं करना, उतनी अक्कल तो मुसलमान में भी है। ये तो जैन दर्शन का शास्त्र चलता है, मुसलमान का नहीं चलता है। पुण्य को छोड़ करके पाप नहीं करना, ये तो कुरान में भी लिखा है,
सब में लिखा है,
है? सभी धर्म में वो बात तो लिखा है। जैन दर्शन की विशिष्टता कौन सी है? तो वो तो पुण्य को छुड़ा करके मोक्ष में ले जाएंगे। ऐसी बात है। लेकिन पुण्य ज्यादा कर लिया हो गया के नहीं हुआ, के नहीं हुआ सवाल वो है। कायदा तो सबके लिए एक है, चाहे मुनिराज हो चाहे कोई भी जीव हो, अगर शुभ का रस बढ़ा तो अटकना पड़ेगा। श्रेणी लगा दे अंतर में जा करके तो मोक्ष का चांस है उसको। हायर दी पोस्ट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्रेणी महाराजा का तो 84,000 का नरक आयु है, और फिर वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। आने वाले 24 में आदिनाथ तीर्थंकर होकर के हमारे महापद्म तीर्थंकर होकर के मोक्ष में पधारेंगे। तो उनको तो 84,000 ही बाकी रहा, उनको तो 33 सागर में का 84,000 कुछ नहीं है। 33 सागर में असंख्यात अरब वर्ष है, उसमें 84,000 तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जाएंगे, वो तो मुनि बने ही नहीं थे, नरकायू में जाना हुआ। तो ये वो जो सागरोपम में स्वर्ग में जाए वो अच्छा, या नरक में गया वो अच्छा?
नरक में गया वो अच्छा, जल्दी जाओ। समय नहीं आ रहे।
किसको आप अच्छा कहेंगे? सागरोपम में स्थित, अगर स्वर्ग में जाते तो सम्यक दृष्टि को सागरोपम का आयु बनता बनता और बनता ही। उनको तो नीचे वाला बनता, नीचे के देव में 10,000 से लेकर के स्थिति शुरू होती है। दोनों गति में मिनिमम आयु 10,000 साल का होता है। अब किसको अच्छा कहेंगे आप?
ब्रेन वॉश करना,
ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। बात तो सही है, ये ब्रेन को वॉश करना पड़ेगा। जब भावना नहीं थी तो भावना किसकी थी? बराबर पूर्णता की थी, फिर पूर्णता क्यों नहीं लिया? जब उन्होंने कुटुंब परिवार छोड़ दिया, व्यवसाय छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिया, नगर की बस्ती को भी छोड़ दिया है, जंगल के जंगल में जाकर के तप किया है, फिर क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं किया?
ये तो सही बात है।
पुरुषार्थ भी, पुरुषार्थ सहज है तो सहज पुरुषार्थ तो नहीं हुआ ने, और पुण्य भी सहज हुआ ने, पुरुषार्थ सहज नहीं हुआ और पुण्य भी सहज हुआ। मुनिराज का शास्त्र का नहीं, ऐसा है अपने यहाँ वो शास्त्र अभी नहीं पढ़ते हैं, जो मुनिराज के उपदेश वाले शास्त्र हैं। भगवान तीर्थंकर देव ने मुनिराज को ऐसा उपदेश दिया है कि देख आत्मा, तू मुनि पद तक तो पहुंचा है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, फिर ध्यान रखना, अगर यहाँ भी तू पुण्य में फंसेगा और पुरुषार्थ करके इसी भाव में केवल ज्ञान नहीं लेगा तो स्वर्ग में बहुत बड़ा जंक्शन आ जाएगा रुकने के लिए। ये स्वर्ग का आयु बड़ा जंक्शन है, ये मामूली वहां ट्रेन ज्यादा रुकती है, मोक्ष में जाने के पहले बीच में जंक्शन बड़ा आ जाएगा, वहां से गाड़ी जल्दी छूटेगी नहीं, तो ध्यान रखना है तेरे को, ऐसा उपदेश दिया है भगवान ने।
उनको प्लस पॉइंट मिला था,
तो भगवान का उपदेश को अंगीकार कर लिया होता और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया होता तो कोई आपत्ति नहीं, अगर नहीं किया तो जंक्शन में जाना पड़ेगा, वो तो बताया है भगवान ने।
अपने प्लस पॉइंट चूक गए
हैं,
जो उनको प्लस पॉइंट मिला था मुनि पद का वो चूक गए।
हाँ चूक गए, ऐसे हमको हमको मनुष्य भाव प्लस पॉइंट वाला मिला है। अगर हम मोक्ष मार्ग में नहीं आए तो चुक जाएंगे प्लस पॉइंट को, तो फिर बहुत काल तक मनुष्य भाव मिलने वाला। अगर मिथ्यात्म आयु पूरा करता है मनुष्य तो उसको लंबे काल तक मनुष्य आयु मिलने की संभावना नहीं होती, इतना पाप होता है इधर। थोड़ा 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 आस्ते आस्ते ब्रेन वॉश करना क्या थोड़े कर लेना, सब जितना भी कचरा भरा है दिमाग में थोड़े थोड़े निकालते जाना।
बहुत गंभीर न्याय है, बहुत गंभीर न्याय है।
हाँ गंभीर बात है, ऐसी बात है। गुरुदेव थोड़ा भी सुनने वाले को ठपकारते हैं आखिरी में कि देखो ज्ञान है सो आत्मा का एक गुण है किंतु असाधारण है ना, इसलिए अभेद विविक्षा से ज्ञान को ही आत्मा कहा है, ऐसी बात मैंने बहुत रहस्यपूर्ण बात है, अभी बहुत परिश्रम करके दुकान धंधा मजूरी से निवृत्ति नहीं लेते हैं तो ये बात उसको कैसे समझ में आएगी, जो दुकान धंधा में फंसे हैं। गुजराती में लिखे मांड मांड दुकान ना धंधा आदि मजूरी करीने नवरा पड़ता हो त्या आवड़ी एने केवी रीते समझाय, आ केम समझवो? क्या तो आटा पाटा खेलने का है ना, ग्राहक को ऐसे समझाना उल्टा पुल्टी करके माल को दे देना, ग्राहक को समझा करके बिक्री कर देना माल की, उल्टा पुल्टा समझा करके उसको ये बात कैसी समझ में आएगी कि ज्ञान है सो आत्मा है। क्या बढ़िया, क्या समझू ने किवी रीते समझू, किंतु भाई ये तो सभी एक ली पाप की मजदूरी है, पाप की मजदूरी है, उसमें तो पुण्य बंधन भी पूरे पाप के पोटले पाप के थोक बांधते हैं, धंधा करते हैं, इसमें क्या है थोक बंद पाप पैदा होता है। धर्म तो दूर रहो, उसमें धर्म तो नहीं है, पुण्य भी नहीं है,
धंधा करने वालों को बुरा लग जाएगी।
प्रामाणिकता से करे तो पुण्य होगा कि नहीं होगा?
पाप ही है, अशुभ है।
प्रामाणिकता से धंधा करे तो भी पाप है, पुण्य है ही नहीं। थोड़ा फुर्सत लेकर के रोज दो चार घंटा सत्समागम और सत्शास्त्र स्वाध्याय मनन चिंतन करे तो वो भी पुण्य है, वो पुण्य से भी धर्म होने वाला नहीं है। ये गुरुदेव का तोप का गोला है, थोड़ा गति सुधरता है। वो मनुष्य मर करके तीन इंच में जाने वाला था, फिर निवृत्ति लेकर के सत्समागम और शास्त्र स्वाध्याय ज्यादा करेगा तो गति सुधरेगी। और ऐसे अवसर में कोई प्रकार से अंतर पुरुषार्थ को जागृत करे तो धर्म होने वाला है। ये पुरुषार्थ आदिन है, पुण्यादिन नहीं है, तो सम्यक दर्शन होता है। पर लेकिन आजकल फुर्सत कहाँ है किसी को, और कभी कोई सामान्य सुनने को फुर्सत लेता है तो उनको अपाश्रय में सुनाता है कि व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, दान करो, तुमको धर्म
हो जाएगा,
जाओ। तो ऐसा उसका जो मिथ्या उपदेश सुनता है, क्या तो कहते हैं कि 24 घंटे में बिचारे एक घंटा बहुत परिश्रम करके समय निकालता है, सुनने को जाता है, तो कुगुरु इसका एक घंटा को भी लूट लेता है। क्या करे, जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, ऐसे ही चली जाएगी। और ये कोई पैसा वैसा का शरण आने वाला नहीं है, कितना भी पैसा होगा अशरण ऐसा आय हो जाएगा, कोई पैसा उसको बचा सकेगा नहीं है। अरे प्रभु, कदाच इसमें से थोड़ा पैसा धर्म के नाम के खर्च करेगा तो भी धर्म होने वाला नहीं है, लेकिन धर्म हुआ है ऐसा धर्म का नाम से बहाना से तुम क्षेत्रपिंडी में आ जाएगा, तुम उसको धर्म मानेगा तो धर्म तो हो गया नहीं, लेकिन धर्म की मान्यता का मिथ्यात्व हो जाएगा।
साथ में ऐसा ही लिखा है, एक मनुष्य चली जाती है, जो बस्ती है वो स्त्री कुटुंब में चली जाती है और धंधे में, और जो बस्ती है तो गुरु लूट लेता है।
होता है, टाइम बचता नहीं है, धंधा में से टाइम मिलता है तो कुटुंब परिवार में देना पड़ता है। क्यों दुकान से दे रहा है आपको, घर में तो टाइम पर आना चाहिए, हमारे लिए टाइम नहीं रखते हो, सारे दिन धंधा धंधा क्या बात है। अब इसमें से थोड़ा निकला तो कुगुरु लूटता है, टाइम तो उसका लूटा जाता है, पूरी आयु से लूटा जाती है उसके, ऐसी बात होती है। बहुत सुगम कर दिया है मोक्ष मार्ग को, सुगम कर दिया है कि देख तेरे में ज्ञान है, ज्ञान में स्वप्ना तो कर ले, बस उतना ही सरल है। तेरे तेरे पास ज्ञान है, ज्ञान को स्वरूप से अनुभव कर ले, बस धर्म हो जाएगा।
आत्मा खुल कर दिखा दिया है, अनुभव ना है खाली।
हाँ, खुल कर उतना सुगम सरल कर दिया है श्री गुरु ने, मोक्ष मार्ग को बहुत सरल किया है,
संतों ने सरल कर दिया,
संतों ने मोक्ष मार्ग को बहुत सरल कर दिया है। उतनी बात है, ज्ञान है सो आत्मा है,
पुण्य पाप अधिकार चल रहा है उसमें,
पुण्य पाप अधिकार चलता है तो अधिकार पुण्य पाप का, और आचार्य महाराज अधिकार चलाता है ज्ञान का। पुण्य पाप का चलाया क्या, ज्ञान का चलाया, ज्ञान का चलाया। देखो अधिकार का नाम है पुण्य पाप का, और बात कौन सी चलती है, ज्ञान की चलती है। निगोद में जाने का होता है, उत सूत्र परिपूर्ण सरीखा दोष नहीं, क्या उत सूत्र परिपूर्ण सरीखा कोई दोष नहीं है। आनंद गंज ने गाया कि नहीं गाया, ऐसी बात है। राग का अभाव वाला लिया ने, राग का अभाव यही ज्ञान का परिणाम है, वितराग भाव रूप ज्ञान का परिणाम है।
छोटा व्यवसाय किया था हमने, धर्मों में थे, सब कुछ अपराध हुए, तो छोटा व्यवसाय करते हैं तो नुकसान कम है, अब व्यवसाय बड़ा करने बैठे
हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। जितना बड़ा पैमाने में व्यवसाय करता है उतना रस उसको ज्यादा है, तो उतना और नुकसान हो जाएगा,
तो बहुत समझ लीजिए,
निकलने का मुश्किल हो जाएगा, उसको वहां से छूटने का मुश्किल हो जाएगा। फिर आएगा, लक्ष्य होगा और बोलेगा अरे पुरुषार्थ नहीं, मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता है, करने लायक तो ऐसा पुरुषार्थ है लेकिन नहीं चलता है, ऐसा क्यों बोलता है कि रस बहुत ले लिया है। उल्टा जितना दूर गया है उतना समीप आने में देर लग जाएगी, ये बात तो है उसमें। ऐसी बात है,
सावधानी जरूरत है।
हाँ, भावार्थ लेते हैं वे। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है, और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, यह कह कर के ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। एक बालक था, वो नीम का पेड़ में, वो निमोली होता है ना, नीम का पेड़ का फल होता है छोटे छोटे, वो हरी होती है तो बहुत कड़वी होती है, और जब पक जाती है तो मीठी हो जाती है, वो कड़वा रस मीठा रस में परिणमन कर देता है। वो चूसता था, उसको कैरी की तरह घोल करके उसमें से रस को चूसता था। तो इसका जो कोई प्रेम करने वाला था पड़ोसी, वो आम ले आया, उसको बोला कि निमोड़ी छोड़ दे। क्या
निमोड़ी छोड़ दे,
निमोड़ी छोड़ दे, हम तुमको आम देता है। तो कहे नहीं 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 नहीं, मुझे तो निमोड़ी बहुत मीठी लगती है। नहीं छोड़ता था तो हाथ में से ले लिया तो रोने लग गया, ये मेरे हाथ में से ले लिया ले लिया ले लिया, लेकिन तुमको ये आम देते, तुम खा तो सही, स्वाद तो ले। ऐसे पुण्य का स्वाद छुड़ा करके आत्म शांति का और आत्मिक सुख का स्वाद देते हैं श्री गुरु,
आम देते हैं मीठा।
तो अज्ञानी रोने लगता है, अरे अरे हमारा पुण्य छुड़ा दिया, पुण्य छुड़ा दिया।
क्या हम पाप करें,
क्या हम पाप करने लग जाए, क्या मीठी लिमोली नहीं चावे तो क्या कड़वी लिमोली को खावे क्या। अरे भाई तुमको आम दे रहे हैं, तुम क्या क्यों ऐसी बात करता है, तुमको हम आम मीठी मीठी आम दे रहे हैं, तुम ये लिमोली को क्यों ऐसा पकड़ते हो। ऐसे यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चलती है तो क्या हम पुण्य छोड़ करके पाप करें क्या, ये प्रश्न भी
नहीं।
उठाने लायक
नहीं है। नहीं है।
यह कर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ज्ञान है सो
आत्मा ही
आत्मा है, पुण्य पाप दोनों अनात्मा है। क्या
अनात्मा, वो अनात्मा है,
ज्ञान आत्मा है और पुण्य पाप दोनों अनात्मा है। एक ही चांडाल के कुल में पैदा हुए हैं, तो आगे कह कि इसी अधिकार में आगे वो बात चल गई कि पुण्य पाप दोनों एक ही चांडाल के घर में पैदा हुए हैं। एक लड़का चांडाल के घर में रहा, एक ब्राह्मण के घर में बड़ा हुआ,
दोनों
चांडाल ही है। वो चांडाल के घर में है वो तो मदिरा मांस खाता है, और ब्राह्मण के घर में जो लड़का गया वो तो मांस मदिरा को छूता भी नहीं है, और शास्त्र का श्लोक बोलने लगता है, फिर भी वो चांडाल है, वो चांडाल ही है। ऐसे पुण्य और पाप एक ही बाप की संतति है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो आत्मा नहीं है, आत्मा की जात नहीं है, वो जाति भेद है। क्या लिखा है वहाँ,
जाति भेद है,
जाति भेद है। भले ही ब्राह्मण के घर में वो बड़ा हुआ है, लेकिन जाति भेद तो है ही। ऐसे पुण्य कैसा भी हो, किसी भी उच्च कोटि का हो, लेकिन जाति भेद है, वो आत्मा की जाति का परिणाम नहीं है, वो भाव आत्मा की जाति का है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। इसलिए ज्ञान है वो अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ विरोध नहीं है। इसलिए टीका में, इस ग्रंथ की टीका में कई स्थान पर, जगह जगह पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा है, यही कारण है। ये बात तो जयचंद जी ने बहुत जगह खुली है, बहुत जगह खुली है, ज्ञान को आत्मा कह करके आत्मा का भाव भाषण करवाया है, पहचान करवाई है, और ज्ञान को आत्मा कह करके अनुभव करवाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करवाई है, और यही मोक्ष का मार्ग है, संसार से छुटने का
एक ही मार्ग
है, और कोई मार्ग
नहीं
है। अब परमार्थ मोक्ष कारण से अन्य जो कर्म जैसे पुण्य बनता हो, पुण्य कर्म बनता हो, पाप कर्म बनता हो, उनका निषेध करते हैं क्या? उनका आदर नहीं करते लेकिन उसका निषेध करते हैं। भूतेण निच्छेद व्यवहारेण विदुषा पच्छन्ति परमठ मसिदान दुजदीन कमखो विहियो। देखो कि जो बहुत पढ़ पढ़ करके सुन सुन करके विद्वान पंडित हो जाता है वो व्यवहार का वर्तन करके व्यवहार का उपदेश देता है कि ऐसा पुण्य करो, ऐसा पुण्य करो, लेकिन कर्मक्षय का जो विधान मैंने विधि का जानकारी कोई है तो वो तो जिसने परमार्थ को पाया है ऐसे संत ज्ञानी महापुरुष है वही जानते हैं। इस रहस्य को पंडित लोग जानते हैं, इसमें सामान्य जन की बात नहीं लेकर के विद्वान की बात लिया। क्या शब्द लिया? विदुषा, विदुषा प्रवर्तन्ति, विद्वान सह प्रवर्तते। विद्वान लोग ये भूल खाते हैं। कौन भूल खाते हैं? विद्वान लोग की भूल होती है। सामान्य आदमी तो भूल हो गई होवे, फिर जब शास्त्र पढ़ने वाले विद्वान लोग भी ऐसा भूल करते हैं तो फिर दूसरे को तो क्या कहना। इसलिए ज्ञानी जो संत हैं उसके चरण में जाना, ये आज्ञा क्या है, ये शास्त्र लक्ष्य आया कि नहीं आया है? 194 पत्र में लिखा है रूपानुदेव ने कि सभी शास्त्रों का शास्त्र लक्ष्य देखने में जाए तो यह है कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अप्रतिबद्ध विहारी है ऐसे ज्ञानी के चरणारविंद में जाना चाहिए। इसके चरणारविंद में जाने से जिस दशा को वो प्राप्त हुए हैं उसी दशा की प्राप्ति होगी। कब होगी? कि उसके चरणारविंद में जाकर के इसका वचन की प्रतीति करेंगे तब, और उसकी पहचान करेंगे तब। वो बात लिया है परमार्थ आश्रित संत को, आश्रित शब्द लिया है क्या?
परमार्थ आश्रित,
परमार्थ आश्रितानाम तु परमठम असिदान। क्या मूलम है? परमठम असिदान, ये शास्त्र लक्ष्य आया, आया कि नहीं आया? बात तो आती है। फिर
भगवान।